हरे कृष्णा। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आप चार महीने अभी केवल इन सुंदर ग्रंथों का अध्ययन करते आए हैं। वास्तव में जैसे कि हम आगे चल के देखेंगे, जितनी हमारी श्रद्धा इन ग्रंथों में होगी और इस भक्ति के दर्शन में होगा, इन शास्त्रों में होगा, उतना ही हम भक्ति में और दृढ़ हो जाएंगे। रूप गोस्वामी स्वयं बतलाते हैं कि श्रद्धा ये तो कृष्ण और शुद्ध भक्त की कृपा से आती है, परंतु जहां तक हमारा प्रयास है वो हमारे शास्त्रों के दर्शन को समझना और उसमें श्रद्धा रखने के ऊपर है। जितनी ज्यादा हमारा सुदृढ़ विश्वास शास्त्रों के दर्शन में होगा, खास करके जो भक्ति के शास्त्र हैं, उतना ही हम भक्ति में आगे प्रगति कर पाएंगे। तो आप भगवद गीता पढ़ रहे हैं, ईशोपनिषद, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, रूप गोस्वामी विरचित। तो हम शुरू से इस ग्रंथ को पढ़ना आरंभ करेंगे। आप सबके पास ये ग्रंथ है ना, तो कृपया प्रतिदिन इस ग्रंथ को लाइएगा और हम साथ साथ पन्नों को घुमाते जाएंगे और चर्चा करते जाएंगे। तो कोई एक भक्त कोई सेवा करेंगे इसको घुमाना, जैसे जैसे हो जाए तो कोई कृपया इसको घुमाए, या अगर इसको नीचे किया जाए तो हम खुद भी घुमा सकते हैं। नीचे किया जा सकता है? नहीं
नहीं।
तो आप में से कितने भक्तों ने भक्ति रसामृत सिंधु या प्रभुपाद जी की भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ी है? एक बार हाथ ऊपर कीजिए। किसी ने पढ़ा है? वाह, एक दो तीन, कई हैं। थोड़ा सा, पूरा नहीं लेकिन थोड़ा सा पढ़ा है। यहां जो आमुख है, आमुख मतलब प्रिफेस, आमुख उसके बाद भूमिका, उसके बाद पहला अध्याय शुरू होगा। तो सबसे पहले हम आमुख में जो प्रभुपाद जी ने लिखा है उसकी चर्चा करेंगे। जैसे कि यहां पर बतलाया हुआ है, इसको थोड़ा सा ऐसा करेंगे ताकि हम भी देख सकें इसके क्या है। आप सब देख सकते हैं वहां से, वो हटाया जाए तो फिर ये किया जा सकता है इसको। तो इस आमुख के तीन भाग हैं, अगर पढ़ेंगे प्राय सात पन्ने हैं। तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु के इतिहास का वर्णन संक्षिप्त रूप में करते हैं और ये बताते हैं कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले ये उपदेश रूप गोस्वामी को दिया था और रूप गोस्वामी का जीवन परिचय भी करते हैं, देते हैं। आपको दिखाई दे, आप देख सकते हैं, आप पीछे वहां आप देख सकते हैं। वृंदावन में हम सब यहां अभी निवास कर रहे हैं, तो हमारे लिए षड गोस्वामी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि षड गोस्वामी भी यहीं पर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने षड गोस्वामियों को वृंदावन आने के लिए आदेश दिया था और उन्होंने कहा था कि वृंदावन में निवास करके जितने भी भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थली हैं जो इस समय प्रकट नहीं हैं, उन्हें आप प्रकट कराना, ढूंढ निकालना, इनको स्थापित करना, ताकि आने वाले वर्षों में जगह जगह से वैष्णव यहां पर आ सकें और भगवान का स्मरण कर सकें। दूसरी बात कि आप यहां प्रचार हेतु विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा करना, मंदिरों का निर्माण करना, और ये अच्छे ढंग से स्थापित करना कि अर्चक विग्रह की सेवा कैसे की जाती है, ये भी साथ साथ स्थापित करना कि वैष्णव का आचार कैसे होना चाहिए, वैष्णव का व्यवहार कैसे होना चाहिए, प्रचार करना हरिनाम के महात्म्य का। और एक आदेश महाप्रभु ने उनको दिया कि सारे ग्रंथों को पढ़ के इन ग्रंथों में जो सार है, भक्ति का सार है, उसको निकाल के प्रस्तुत करना, ताकि सभी लोग भली भांति समझ जाए कि वेदों का तात्पर्य क्या है, मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। षड गोस्वामी बड़े विद्वान थे, छह के छह, नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणों सद्धर्म संस्थापको, नाना शास्त्र विचार अनेक निपुण, बड़े निपुण थे शास्त्रों के विचार में, और सद्धर्म की स्थापना उन्होंने की। कभी कभी भगवान स्वयं आके धर्म की स्थापना करते हैं, जैसे कोई उदाहरण, भगवान ने स्वयं कब धर्म की स्थापना की, कोई उदाहरण दीजिए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने क्या किया, भगवत गीता का उपदेश किया, है ना, सद्धर्म संस्थापको, तो सद्धर्म की स्थापना भगवान ने स्वयं की, क्या करके, भगवत गीता का उपदेश करके। तो कभी कभी स्वयं भगवान सद्धर्म की स्थापना करते हैं, और कभी कभी इस महत्वपूर्ण कार्य को अपने भक्तों के हवाले कर देते हैं। वो भक्तों को ऐसी विशेष शक्ति प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वो ऐसे धर्म की स्थापना और इसका प्रचार प्रसार विश्व भर में कर सके। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। ये किसी ने सुना है श्लोक, क्या मतलब है इसका? भगवान कृष्ण की कृपा और शक्ति दिए बिना कोई भी व्यक्ति कृष्ण भक्ति का प्रचार सब जगह नहीं कर सकता है, दूसरों का हृदय बदल नहीं सकता है। प्रचार करना, प्रवर्तन, सब जगह जाके इस बात को फैलाना, प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे अपने भक्तों को शक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि भक्तों का गौरव हो, भक्त लोग जहां बड़े प्रसिद्ध हो जाएं कि इन्होंने धर्म की स्थापना की, इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे। तो सारे छह गोस्वामी जो हैं बड़े विद्वान थे, और उनके प्रमुख हैं श्री रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के बड़े प्रिय थे। हम जब मंगलाचरण कहते हैं तो उसमें हम रूप गोस्वामी की प्रशंसा एक श्लोक में करते हैं, कौन सा है वो श्लोक? श्री चैतन्य, हम सब साथ में बोलेंगे, श्री चैतन्य मनो स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामह्यम ददाति स्वपदांतिकम। तो आप में से कोई एक इसका अर्थ बताइए, मतलब क्या है इस श्लोक का?
जिसने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मन का अभिष्ट जाना है और उनके जैसा वे चाहते हैं उस तरह से प्रचार के हेतु उन्होंने उनको जान करके शास्त्रों के द्वारा मत को प्रस्थापित किया है।
स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम, तो चैतन्य महाप्रभु के हृदय की बात रूप गोस्वामी ने जान ली। इसके पीछे क्या लीला है आपको मालूम है? ये श्लोक का निर्माण की रचना क्यों हुई? क्योंकि हम ये रूप गोस्वामी द्वारा एक ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, तो हमें जानना चाहिए कि इसके जो रचयिता हैं वो कौन है वास्तव में, और इनकी बातों के ऊपर हमें क्यों इतना विश्वास करना चाहिए। जब रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी गए थे तो हरिदास ठाकुर की कुटिया में रह रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु रोज हरिदास ठाकुर का दर्शन करने आते। चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, हरिदास ठाकुर भक्त हैं, फिर भी चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त का दर्शन करने आते। हरिदास ठाकुर को अनुमति नहीं थी जगन्नाथ मंदिर में जाने के लिए, क्योंकि उनका जन्म एक यवन परिवार में हुआ था। इसलिए हरिदास ठाकुर बड़े नम्रता से अपने आप को बड़ा दीनहीन समझते हुए अपने कुटिया में ही रहा करते थे, और दूर से जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो विष्णु चक्र है उसी का दर्शन करते थे। ऐसे समझा जाता है कि अगर कोई इस चक्र का दर्शन करता है तो मंदिर के अंदर जो विग्रह है उसके दर्शन करने के बराबर है ये। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण हैं, जो कि जगन्नाथ हैं, वही वहां पर आया करते थे रोज। तो एक बार ऐसे हुआ कि रूप गोस्वामी कोई पंक्तियां लिख रहे थे, और एक पन्ने के ऊपर लिखकर उन्होंने वो छत के पास में ही रख दिया ऊपर। महाप्रभु आए और उन्होंने अचानक देखा कि ये क्या है, और पढ़ा, और पढ़ के उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जो श्लोक चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में अक्सर कहा करते थे जगन्नाथ जी के सामने, जिसमें उनके अंतःकरण का जो गुह्य भाव है वो प्रकट करते थे, और जिसको कोई नहीं समझता था सिवाय स्वरूप दामोदर गोस्वामी, और उस श्लोक का जो भाव है, भावार्थ जो है, वो रूप गोस्वामी के इस श्लोक में था। तो बड़े प्रेम से चैतन्य महाप्रभु ने थप्पड़ मारा रूप गोस्वामी को कि तुम्हें मेरे हृदय की बात कैसे समझ में आ गई, कि उस श्लोक में मैं जो भाव मेरा था वो क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन तुम्हें कैसे पता होगा। तो हरिदास ठाकुर वहां पर थे, तो उन्होंने कहा कि ये प्रमाण है कि रूप गोस्वामी को आपकी असीम कृपा प्राप्त हुई है, और फिर ये श्लोक की रचना हुई। तो ये है रूप गोस्वामी, वही रूप गोस्वामी जिनको ऐसी कृपा श्री चैतन्य महाप्रभु की प्राप्त हुई थी। तो छह गोस्वामियों में से सबसे पहले वृंदावन आने वाले रूप गोस्वामी थे। हाँ, इनके पहले भी तो और अन्य भी गोस्वामी आए थे वृंदावन में, कोई नाम बता सकते हैं? लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, और कौन, काशीश्वर पंडित, ऐसे कई वैष्णव थे जो आए थे यहां पर, परंतु षड गोस्वामियों में से सर्वप्रथम वृंदावन में आने वाले रूप गोस्वामी पाद थे। पहली बार उनकी मुलाकात कब हुई? आप सब पढ़ के आए हैं ना अमुक, तो बताइए पहली बार कब दर्शन किया रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु का, कहां किया? रामकेली में। उस समय रूप गोस्वामी क्या करते थे? नवाब हुसैन शाह के सरकार में वो मंत्री थे, दबीर खास, और उनके भाई का नाम क्या था? साकर मल्लिक। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए, दोनों भाई पहले से ही बड़े पंडित थे, ऐसा नहीं कि उनको कुछ पता नहीं था, वो अरबी भाषा में, फारसी भाषा में, संस्कृत भाषा में ग्रंथों को पढ़ते थे, बड़े विद्वान थे, भागवत को भी पढ़ा करते थे। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए उनके हृदय में ऐसा एक परिवर्तन हो गया कि उन्होंने ठान लिया कि अब हमें यहां नहीं रहना है, अब हमें महाप्रभु के साथ जाना है, और उस दिन से उनके मन में ऐसे वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई कि उसको वो रोक नहीं पाए और अपनी तैयारी में लगे रहे। तो पहली बार महाप्रभु से का दर्शन वहां पे हुआ, फिर बाद में रूप गोस्वामी अपने पद को छोड़ दिए और जितना भी धन उन्होंने कमाया था वो उन्होंने बांट दिया। अब यहां भी अमुख में लिखा हुआ है कि कैसे उन्होंने धन बांटा, बताइए।
सबसे पहले उन्होंने आधा तो भगवान की सेवा में लगाया, और आधा अपने
भगवान की सेवा में लगाया, क्या क्या विशेष करके कैसे? हाँ, वैष्णव और ब्राह्मण इनकी सेवा में उन्होंने अपना 50% धन जो है वो इस्तेमाल किया, और फिर
25% अपने संबंधियों के लिए,
25% अपने संबंधियों के लिए उन्होंने रखा,
25% अपने निजी आवश्यकताओं,
25% अपने निजी आवश्यकताओं के लिए, विशेष करके आपातकालीन अवस्थाओं के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने अपने सारे धन का विभाजन कर दिया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, क्या कहते हैं इस संदर्भ में, कि हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे अपने धन को बांटना चाहिए। सिद्धांत तो ये है कि जो गृहस्थ हैं, जो व्यवसाय करते हैं या जिनका धन है, उनको केवल अपने लिए धन को नहीं रखना चाहिए बल्कि बांटना चाहिए, और रूप गोस्वामी ने हम सबको पथ दिखलाया है। और इसके बाद फिर रूप गोस्वामी रामकेली को और अपने पद को छोड़कर वृंदावन की ओर आए, और पहले महाप्रभु का संग प्राप्त किया और उसके बाद महाप्रभु के आदेशानुसार वृंदावन में चले आए। लेकिन इसके पहले वो कहां मिले थे चैतन्य महाप्रभु से? दूसरी बार रामकेली के बाद कहां मिले थे? प्रयाग में। और प्रयाग में कितने दिन रहे?
10 दिन।
और वहां क्या किया महाप्रभु ने? हाँ बिल्कुल, दशाश्वमेध घाट नाम का स्थान है, वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने लगातार 10 दिन श्री रूप गोस्वामी को उपदेश दिया। रूप गोस्वामी ने बड़े ध्यान से इस उपदेश को सुना और तत्पश्चात उन्होंने व्याख्या की, इसका विस्तार किया, शास्त्रों के निर्मल ज्ञान के आधार पर जो उन्होंने महाप्रभु से सुना था उसका और विस्तार किया और विभिन्न ग्रंथों की रचना की, जैसे कि भक्ति रसामृत सिंधु। तो भक्ति रसामृत सिंधु जो है ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पर आधारित है। और श्रील प्रभुपाद यहां आगे कहते हैं कि हमारा जो आंदोलन है और इस आंदोलन में संस्था हमारी है इस्कॉन, ये आंदोलन रूप गोस्वामी विशेष करके चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के ऊपर आधारित है, परंतु खास करके रूप गोस्वामी जो हमारे प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। इसलिए हम सबको क्या हम क्या कहते हैं अपने आप को? रूपानुग। रूपानुग मतलब क्या है? इसका विभाजन कीजिए शब्द का। रूप अनुग। रूप मतलब रूप गोस्वामी, अनु मतलब पीछे जाने वाले, पीछे आने वाले, बाद में आने वाले, पद चिन्हों में चलने वाले। जैसे कहा जाता है ना, छोटा भाई है तो छोटा बच्चा है तो उसका नाम अनुज रखा जाता है या अनुजा रखा जाता है, बाद में आने वाला या बाद में आने वाली। छोटा भाई या छोटी बहन जो होती है कभी कभी ऐसे नाम रखते हैं, अनु। और ग, ग मतलब जाना, तो रूपानुग मतलब वो जो रूप गोस्वामी के पद चिन्हों में चलते हैं, जो रूप गोस्वामी के पीछे पीछे चलते हैं, रूप गोस्वामी ने बतलाए हुए पथ पर चलते हैं। तो हमारा पथ कोई मनोधर्म के ऊपर आधारित नहीं है, पूर्ववर्ती आचार्यों ने बतलाए हुए मार्ग पर हम चलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारी स्वतंत्रता इस बारे में नहीं है। जैसे अन्य बहुत सारे साधु महात्मा हुए हैं आधुनिक काल में और पहले भी, जिनका मुद्दा रहा है यतमत यतमत ततपथ। इसका मतलब क्या है? जो आपका मत है वही आपका पथ है, वो सही है। अगर आप सोचेंगे कि भगवान निराकार है तो वही सही है, अगर आप सोचेंगे जैसा एक साधु बताया करते थे कि भगवान सब जगह है, इसलिए आप एक भैंस के ऊपर भी ध्यान कर सकते हैं। उनका प्रसिद्ध एक वाक्य है कि भैंस के ऊपर भी ध्यान कीजिए, अगर ये आपका मत है तो आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से तरह तरह की गलत धारणाएं लोगों ने सामने रखा है समाज के सामने, जैसे उनके मन में विचार आता है वैसे वो कह देते हैं, और जो मासूम प्रजा है वो उन बातों को स्वीकार कर लेती है, क्योंकि प्रजा अनुभवी, उनको जानकारी नहीं है। लेकिन ये आंदोलन जिसमें हम सौभाग्य से यहां पर आए हैं, ये ऐसा नहीं है, ये साक्षात भगवान की वाणी है, के ऊपर आधारित है, साथ साथ शास्त्रों के ऊपर, और स्पष्टीकरण इसका किया है श्री रूप गोस्वामी ने, इसलिए हमें रूपानुग कहते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर श्रील प्रभुपाद जी ने आमुख में भक्ति रसामृत सिंधु के की रचना का इतिहास दिया है, रूप गोस्वामी के जीवन का परिचय दिया है। और कुछ आप इसके बारे में पूछना चाहते हैं, रूप गोस्वामी के बारे में या भक्ति रसामृत सिंधु की रचना के बारे में? तो ठीक है, आगे चलते हैं। फिर दूसरा विषय जिसकी चर्चा यहां श्रील प्रभुपाद जी आमुख में करते हैं, इसी में है। हाँ, भक्ति पहला विषय जो यहां है वो समाप्त कर लिया है, ठीक है। अब दूसरा, भक्ति रसामृत सिंधु का अर्थ एवं महत्व, ठीक है। अभी कर लेते हैं, फिर हम वापस आ जाएंगे। अच्छा, ऐसा करेंगे, इसको फाड़ दीजिए, और ये है ब्लू टाइप, इसको थोड़ा चिपका देना है। तो यहां सामने ऐसे, ये है ना, अच्छा वो है, तो ऐसे हमें बताया गया कि जो चर्चा होती है क्लास में, उसके पहले दिन आप पढ़ के आते हैं, है ना। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। आगे चल के काफी हम लोग गंभीरता में विश्लेषण करेंगे, इसलिए अगर आप थोड़ा सा पढ़ के आएंगे पहले से तो आपके लिए बहुत सुविधाजनक हो जाएगा, फिर आप अच्छी तरह से प्रश्न भी कर पाएंगे। तो अभी जो दूसरा विषय है, भक्ति रसामृत सिंधु शब्द का अर्थ और महत्व, तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि यहां प्रभुपाद जी शुरुआत करते हैं भक्ति की परिभाषा से। भक्ति का मतलब क्या है, बताइए, क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी? प्रीति पूर्वक सेवा। सेवा केवल प्रीति नहीं, प्रीति पूर्वक सेवा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जहां प्रेम है वहां सेवा होना ही है, अगर सेवा नहीं है तो वो प्रेम नहीं कहलाता। समझ लीजिए कि एक माँ है, बच्चा बहुत छोटा है, रात को रोता है, माँ कहती रोने दो, हम नहीं उठेंगे, लेकिन माँ उठती है क्योंकि प्रेम है। तो सेवा करनी है बच्चे की तो माँ उठ जाती है, रात भर कभी नींद नहीं होती लेकिन करती है क्योंकि प्रेम है। उसी प्रकार से अगर वास्तव में हम भगवान से प्रेम करते हैं तो मैं उस प्रेम का प्राकट्य कैसे होगा, प्रेम का प्रमाण क्या है? जब तक हम सेवा नहीं करेंगे भगवान की तो कैसे पता चलेगा कि प्रेम है या नहीं? तो इसलिए प्रेम का मतलब है सेवा, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए बहुत, केवल दो तीन शब्द है ये, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रीति पूर्वक सेवा। संक्षिप्त रूप में अगर वर्णन किया जाए तो ये भक्ति की परिभाषा है। तो वैसे आगे चल के भी और विस्तार में परिभाषा है, आने वाले जो भूमिका में, वो तो और गहराई में हम जाएंगे। यहां तो केवल एक झलक है इस परिभाषा का। दूसरी बात, रस। रस का मतलब क्या है? अभी आप अपने शब्दों में बताइए, ये रस क्या चीज है? हम भक्ति रस के बारे में नहीं कह रहे हैं, भौतिक रस के बारे में बात नहीं कह रहे हैं, केवल रस शब्द ये क्या है, अपने शब्दों में बताइए।
जैसे कोई व्यक्ति परोपकार या और ग्रस्त या और समाज सेवा करता है तो उसे एक प्रकार का रस प्राप्त होता है,
आस्वादन करना। हाँ,
किसी भी चीज को ग्रहण करने से अनुभूति होती
है, किसी भी चीज को ग्रहण करने से जो अनुभूति होती है, ठीक है। अच्छा, और एक सरल उदाहरण देते हैं। आप सबने फल खाया है ना, कोई ना कोई फल तो खाया होगा। जब फल खाते हैं तो फल का सबसे स्वादिष्ट भाग कौन सा होता है? रस होता है ना। आम खाते हैं तो आम रस होता है ना, बहुत स्वादिष्ट माना जाता है, सभी लोग आम रस को पसंद करते हैं। तो जो सबसे स्वादिष्ट भाग होता है फल का, वो है रस। और जितने भी संबंध या कार्य इस दुनिया में हैं, इनकी तुलना एक फल से की जाती है। जिस प्रकार से फल का सबसे स्वादिष्ट भाग उसका रस होता है, और उस रस के स्वाद से हम फल के प्रति आकृष्ट होते हैं और उस फल को बार बार चखना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस दुनिया में जितने भी संबंध हैं, जितने भी कार्य हैं, उनसे भी हमें विशेष प्रकार का एक स्वाद मिलता है, एक आनंद मिलता है। और जिस आनंद की वजह से हम उस कार्य को बार बार करना चाहते हैं, या जिस संबंध को हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते हैं, हाँ, हमारे उद्देश्य में हम सफल हो या ना हो वो अलग बात है, परंतु हमारा प्रयास अवश्य रहता है। सही बात है ना। तो अगर कोई कार्य हमें अच्छा नहीं लगे तो हम क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। अगर कोई संबंध हमें अच्छा नहीं लगे तो हम उसमें आगे क्यों बढ़ेंगे? लेकिन जब कोई संबंध से, दो व्यक्तियों के बीच में कोई संबंध है, उस संबंध से अगर कोई आनंद मिलता है तो ही बात बनती है। सोच लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, अच्छे मित्र बन गए हैं, अभी उस मित्रता में उनको बड़ा आनंद आता है, साथ में घूमते हैं, फिरते हैं, बहुत कुछ करते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो उस संग में उनको एक प्रकार का आनंद आता है और इसलिए अपनी मित्रता को बनाए रखते हैं। लेकिन जिस दिन दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हो जाती है, कोई झगड़ा हो जाता है, शत्रु बन जाते हैं, तो वो स्वाद जो है वो खट्टा कड़वा हो जाता है, फिर वो छोड़ देते हैं संबंध। तो हम कोई कार्य को करने में प्रेरित तब होते हैं जब उस कार्य से जो आनंद मिलता है, या जो संबंध से जो आनंद मिलता है, हमें अच्छा लगे। तो ये अच्छा लगना या बुरा लगना, इसको रस कहते हैं, स्वाद। और यही स्वाद है जो हमें प्रेरित करता है किसी कार्य को करने के लिए या उसको त्यागने के लिए। सही है। तो इसको रस कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ये बड़े सुंदर रूप से उदाहरण देते हैं। यहाँ कौन से उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी? रस के बारे में, इस दुनिया में जो रस है, इस परिभाषा में, वहीं पर। हाँ, गृहस्थ आश्रम के बारे में क्या कहते हैं प्रभुपाद जी?
जो घर का जो प्रमुख है, वो अपने गृहस्थ जो बच्चे हैं, पत्नी है, इनके लिए बहुत दौड़ धूप करता है, बहुत परिश्रम करता है कि ताकि वो उनको सुखी रख सके, क्योंकि वो उनसे, उसका उनसे लगाव बहुत होता है, इसलिए उसके उनकी प्रसन्नता के लिए बहुत करता है।
तो उनका स्वाद क्या है, रस क्या है इसमें?
उनसे स्नेह मिले।
स्नेह, पारिवारिक स्नेह, जो उनका प्रेम है अपने परिवार के सदस्यों के प्रति, वो प्रेम उस व्यक्ति को प्रेरित करता है दिन रात मेहनत करने के लिए। आदमी तरह तरह की तपस्याएं करता है, बहुत कष्ट उठाता है, क्यों? केवल इस स्नेह से प्रेरित होकर। तो ये स्नेह जो उसको प्राप्त होता है, ये है रस। और क्योंकि ये रस है, उसको आनंद मिलता है, इसलिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। उसी प्रकार से और एक उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं। कौन सा दे रहे हैं, पढ़ के बताइए आप। एक है गृहस्थ का उदाहरण दिया है और व्यापारी।
व्यापारी अपने
व्यापारी नहीं दिया है यहां, राष्ट्रवादी या कोई समाज का कल्याण करने वाला। हरेक को, हरेक क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं, उनको अपने अपने कार्यों में थोड़ा आनंद मिलता है। जो राष्ट्रवादी होता है उसको अपने राष्ट्रभक्ति में बहुत आनंद आता है, एक प्रकार का एक उत्साह होता है, तो उस रस की वजह से वो इस कार्य में लगा रहता है। उसी प्रकार से जो समाज के कल्याण का कार्य करता है, गरीबों को मदद करता है, अंधों को, अंधों की सेवा करता है, भूखों को खिलाता है, इस कार्य में भी उसको एक प्रकार का आनंद मिलता है। तो ये रस जो है, ये चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, बिना रस के कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं करेगा। इसलिए रस, इस शब्द को अच्छी तरह से जान लेना ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो रस शब्द की परिभाषा अभी आप अपने शब्द में बताइए। अभी अभी हमने जो कहा रस के बारे में, कि रस क्या है, कौन बताएंगे? आप खुला बोलिए, बड़ा इनफॉर्मल रखेंगे इसको। प्रवचन तो आप सुनते रहते हैं दिन में, क्लास मंदिर में सुनते हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत टू वे होना चाहिए। बताइए अभी आप रस। जब तक ये खत्म हो जाएगा, ये भक्ति रसामृत सिंधु के पहले 19 अध्याय, तो आपको, आप बिल्कुल पक्के हो जाने चाहिए इसमें। कोई भी आपको कुछ भी पूछे, आप प्रवचन देने के लिए तैयार हो जाने चाहिए भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर। हाँ बताइए, रस
जिससे बहुत आनंद मिलता है।
किस चीज में आनंद मिलता है? रस का संबंध किस से है? किसी कार्य से है, किसी संबंध से है, है ना? एक संबंध हो दो व्यक्तियों के बीच में, या कोई कार्य है जो हम कर रहे हैं, इससे संबंधित है। तो क्या संबंध है, आगे बढ़ाइए आपके पॉइंट को। जो हम कोई कार्य करते हैं और या संबंध स्थापित करते हैं, तो उसमें जो स्वाद हमको मिलता है, आनंद मिलता है, वो आनंद हमें क्या करता है, प्रेरित करता है। क्या करने के लिए? उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, उस संबंध को बनाए रखने के लिए, और इसको रस कहते हैं। उदाहरण है फल का, ठीक है? तो अब दो प्रकार के रस इस दुनिया में पाए जाते हैं। एक है भौतिक रस, इसको संसारी रस भी कहते हैं, और दूसरा है भक्ति रस। भक्ति रस तो बहुत कम पाया जाता है संसार में, ज्यादातर तो संसारी रस ही पाया जाता है। फिर भी हमारा लक्ष्य है भक्ति रस। परंतु भक्ति रस क्या है, इसको जानने के पहले ये जान लेना चाहिए कि संसारी रस क्या है, क्योंकि इसमें हम अनादिकाल से रमण करते आए हैं, है ना? कितने जन्मों से बस हम ये संसारी रस को चखते आए हैं, और भक्ति रस का ज्यादा ज्ञान या ज्यादा अनुभव नहीं है। इसलिए भली भांति जान लेना चाहिए कि ये संसारी रस क्या है, इसकी क्या कमियां हैं, और इनसे कैसे बच के रहना चाहिए, इनसे आकृष्ट क्यों नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहां बहुत ही सुंदर ढंग से बताते हैं कि भक्ति रस और भौतिक रस दोनों में बहुत अंतर है। जो संसारी लोग हैं वो दिन रात परिश्रम करते हैं एक रस के स्वाद के लिए, जिसको क्या कहते हैं, इंद्रिय तृप्ति। तो संक्षिप्त में अगर बताया जाए तो ये संसारी रस क्या है? इंद्रिय तृप्ति, बस ये सार है इसका। और इंद्रिय तृप्ति के लक्षण क्या होते हैं, उदाहरण क्या है? जैसे हम तो जानते हैं, हम भगवद गीता से भी सुन चुके हैं कि इंद्रिय तृप्ति का सुख क्षणिक होता है और वो दुख का कारण होता है। कोई गीता का श्लोक बताएंगे आप? बोलिए, पूरा श्लोक बोलिए। शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्या स्ताम स्थिति शस्व भारत, कि ये संसार में सुख और दुख आएंगे और जाएंगे, जैसे गर्मी और जाड़े के मौसम आते हैं और जाते हैं। अगर आज सुख है तो हमें निश्चित जानना चाहिए कि कल दुख आएगा। तो ये संसार में ये जो इंद्र तृप्ति का स्वाद है या जो सुख है, तथा कथित सुख, ये क्षणिक है और इसलिए व्यक्ति तृप्त नहीं होता है इससे। और यह कौन सा उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद, बताइए। व्यापारी का उदाहरण, क्या क्या उदाहरण है व्यापारी का?
व्यापारी पूरा सप्ताह भर बहुत मेहनत करता है और लेकिन ये कार्य जो आनंद के लिए करता है, पैसे कमाने के लिए करता है, लेकिन फिर भी इसमें वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है। तो सप्ताह के अंत में वो छुट्टी लेता है या कहीं बाहर वो आता है चेंज परिवर्तन के लिए। तो ये से हम लोग जान सकते हैं कि ये जो सुबह इसमें हम लोग टिक नहीं पाते हैं, ले नहीं पाते हैं।
बहुत अच्छा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये व्यक्ति दिन रात 5 दिन 6 दिन हफ्ते में बहुत परिश्रम करता है, अपना सब कुछ इसमें लगाकर, फिर 5-6 दिन जब हो जाते हैं तो सोचता है थक गया हूं, अभी हमें बहुत हो गया, अभी कहीं जले जाना चाहिए, दूर जाना चाहिए हमारे दफ्तर से, हमारे दुकान से, हमारे यहां घर से। तो दूर कहीं जाएगा, कुछ छुट्टी लेगा, गोवा जाएगा, शिमला जाएगा, ऊटी जाएगा, जहां यहां छुट्टी के लिए जाएगा और फिर सोचेगा कि चलो बहुत ऊब गए हैं, बहुत आराम करेंगे जाके। फिर 2 दिन ऊटी शिमला में रहता है, फिर क्या हो जाता है, वो फिर भी ऊब जाता है, ऑफिस की याद आती है ना, फिर ऑफिस, फिर से फिर संसार की याद आती है, फिर चले जाता है और फिर वही बात। तो इसको क्या कहते हैं प्रभुपाद जी यहां पर? भोग त्याग। वो पुराने जमाने में वो बड़े घड़ी होते थे, आपको पता है ना, वो पेंडुलम होता था, उसमें टुंग टुंग ऐसे दोनों साइड में, कभी ऐसे फिर ऐसे 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 घूमता था। तो उसी प्रकार से भोग त्याग, भोग त्याग, भोग त्याग। तो सारा संसार किसके पीछे पड़ा है? भोग त्याग, भोग त्याग, भोग त्याग, बस यही है। अगर आप देखेंगे कि बचपन से हम लोग हमारे स्कूलों में इतिहास पढ़ते आए हैं ना, कौन से राजा थे, उन्होंने क्या किया, राज्य को कैसे संभाला, कौन से युद्ध हुए, क्या हुआ, अगर सारे विश्व का इतिहास जो है 2 शब्दों में कहा जाए तो ये केवल भोग त्याग। ठीक है, इसका विस्तार करके राजाओं के नाम, इन्होंने ऐसे किया वैसे किया, लेकिन सार क्या है? वही बात, भोग और त्याग। ये अक्सर हम देखते हैं। इंद्र तृप्ति ऐसी चीज है कि वो दुख देती है। जब ज्यादा दुख हो जाता है तो आदमी उस दुख से दूर हटना चाहता है, थोड़े समय के लिए एक वैरागी की भावना उत्पन्न हो जाती है, बस अभी और नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से उस भोग में लग जाता है, क्योंकि उसके हृदय के अंदर जो भोग की प्रवृत्ति है वो खत्म नहीं हुई है, इसलिए वैराग्य में भी स्थिर नहीं हो सकता और भोग से क्योंकि दुख आता है इसलिए भोग में भी स्थिर नहीं हो सकता। और प्रभुपाद जी यहां पर और एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं, भोग और त्याग में व्यक्ति क्यों नहीं स्थिर रह सकता, बताइए। हमने एक कारण बताया आपको कि भोग से दुख उत्पन्न होता है और दुख कोई चाहता नहीं है, तो थोड़ा भोग करने के बाद वो भोग से दूर होना चाहता है, इसलिए त्याग में जाता है। लेकिन त्याग में जब चले जाता है तो भोग प्रवृत्ति अभी तक खत्म नहीं हुई, इसलिए फिर से भोग में जाता है। इस प्रकार से भोग त्याग चलता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वो क्या है बताइए, कि ये भोग त्याग का चक्र क्यों है? या तो भोग में या त्याग में कोई भी व्यक्ति स्थिर क्यों नहीं रह सकता? यहां लिखा है, पढ़ लिए, चपल सुख है आगे, उससे थोड़ा पहले, उसके पहले वाला जो लाइन है पढ़िए, वो है फिर भी हम भोग में या तो त्याग में सुखी क्यों नहीं रह सकते, स्थिर क्यों नहीं रह सकते? हाँ पढ़िए, पूरा पढ़िए उसको। क्योंकि हम हमारे नहीं, इसके पहले आप पढ़िए, नहीं इसके पहले वाला आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमारे शाश्वत स्वाभाविक स्थिति में हम स्थित नहीं हैं, जो अंग्रेजी में कहते हैं इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। हमारा स्वरूप क्या है? स्वरूप कौन सा श्लोक है बताइए, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। तो जीव का स्वभाव है, जीव का स्वरूप है श्री कृष्ण की सेवा करना। जीव का स्वरूप न तो भोगी बनना है न त्यागी बनना है, जीव का स्वरूप है कृष्ण भक्त बनना। क्योंकि हमारे स्वरूप के विरुद्ध है, हमारे स्वरूप से तालमेल नहीं रखता है, इसीलिए व्यक्ति भोग में और त्याग में दोनों में स्थिर नहीं रह सकता है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, और इसीलिए इस इंद्रिय तृप्ति को चपल सुख कहते हैं। चपल मतलब जो क्षणिक है, चंचल है, और इसके लिए उदाहरण क्या देते हैं श्री प्रभुपाद जी चपल सुख का, कि क्यों यह व्यर्थ है, जितना भी परिश्रम है इस दुनिया में इस चपल सुख के लिए, ये अंततः व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है प्रभुपाद जी क्या कहते हैं आगे, चपल सुख के आगे क्या लिखा है प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, किसका उदाहरण देते हैं? एक गृहस्थ व्यक्ति का उदाहरण देते हैं जो क्या करता है, दिन रात परिश्रम करता है, एक रस मिलता है, परंतु क्या सब नष्ट हो जाता है। जब आखिर मृत्यु आएगी तो जैसे ही मृत्यु आएगी सब खत्म। एक व्यक्ति जो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करता है, दिन रात मेहनत करता है, और इससे उसको बहुत ही एक अच्छा स्वाद मिलता है, जो वो सोच रहा है कि अच्छा है, परंतु हालांकि उसको ये स्वाद मिल रहा है और बहुत ही उत्साह से वो ये सेवा कर रहा है, फिर भी जब मृत्यु आ जाएगी तो क्या होगा, सब नष्ट हो जाएगा, उसकी सेवा खत्म हो जाएगी, वो स्वाद खराब हो जाएगा, वो स्वाद भी नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और प्रभुपाद जी यहां एक बात बताते हैं कि भक्त के लिए ऐसा नहीं है, भक्त भगवान की सेवा करके भगवान को देखता है या भगवान का साक्षात्कार करता है, और जो नास्तिक होता है उसका भगवत साक्षात्कार क्या बताया गया है, मृत्यु। तो जो भगवान में विश्वास नहीं करता तो भगवान उसे कहते हैं ठीक है मैं मृत्यु रूप में तुम्हारे सामने आऊंगा, तब तुम्हें मेरा दर्शन करना ही होगा। लेकिन नास्तिक समझता नहीं है इस बात को, नास्तिक भी भगवान का दर्शन करता है, परंतु किस रूप में, काल के रूप में, मृत्यु सर्वहरश्चाहम गीता में भगवान बताते हैं। लेकिन भगवान का भक्त जो है वो भक्ति के माध्यम से, प्रीति पूर्वक सेवा के माध्यम से सदैव भगवान का साक्षात्कार और अनुभव करते रहता है। लेकिन नास्तिक के लिए जब मृत्यु आती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, और ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले जन्म में वो वहीं से शुरू करेगा जहां की पिछले जन्म में उसने समाप्त किया था सब कुछ। अगर किसी बहुत अमीर परिवार में एक व्यक्ति ने जन्म लिया है, मान लीजिए टाटा बिरला परिवार में किसी को जन्म मिला, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि मृत्यु के बाद भी उसको दूसरा जन्म टाटा बिरला के परिवार में मिलेगा। ऐसा है? जरूरी नहीं। उसके कर्मों के अनुसार उसे कहीं भी जन्म मिल सकता है। हो सकता है कि मनुष्य शरीर भी न मिले, कोई प्राणी का मिले, हो सकता है। तो मृत्यु वो चीज है जो हमारे सारे भौतिक रस को नष्ट करती है, मजा किरकिरा कर देती है। व्यक्ति चाहते हैं कि हम बहुत भोग करते रहें, हमारे परिवार के साथ रहें, मित्रों के साथ रहें, हमारे धन के साथ सदैव रहें, लेकिन नहीं होगा। मृत्यु आएगी और सब खत्म कर देगा। तो ये है संसारी रस। इसलिए संसारी रस के दो लक्षण कौन से बताए गए यहां पर, पढ़िएगा, क्षणिक और अस्थिर। अस्थिर किस दृष्टि से? भोग त्याग की दृष्टि से, कि टिकाऊ नहीं है ये, कभी भोग और कभी त्याग, तो इसलिए अस्थिर है। साथ साथ क्षणिक, थोड़े क्षणों के लिए, थोड़े समय के लिए रहता है। और इसके विपरीत है भक्ति रस। तो भक्ति रस के क्या लक्षण बताए गए हैं? कि भक्ति रस मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता। अब गीता का कोई श्लोक बताइए इसके लिए। यहां पे तो नहीं दिया हुआ है, प्रभुपाद जी नहीं बताते हैं, प्रभुपाद जी लेकिन श्लोक को कोट नहीं कर रहे हैं, श्लोक का अर्थ बता रहे हैं। भक्ति मृत्यु के साथ नष्ट नहीं होता, इसका प्रमाण कोई गीता में कौन से श्लोक से आप दे सकते हैं? हाँ, श्लोक बोलिए। नेहा भी क्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इसका मतलब बताइए कोई, कौन बता पाएंगे? हाँ माता जी बताइए। हाँ सही है, सार वही है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, स्वल्पम थोड़ा सा भी अगर किसी ने इस भक्ति मार्ग में प्रगति किया, त्रायते महतो भयात, महतो भयात बहुत, सबसे बड़ा भय से त्रायते वो बच जाएगा। भगवान कृष्ण की थोड़ी सी भक्ति करने मात्र से सबसे बड़े भय से व्यक्ति बच सकता है। और सबसे बड़ा भय क्या है? यहां प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? कि मनुष्य जीवन के अनमोल अवसर को खो देना सबसे बड़ा भय है। अर्थात हमें किसी पशु या पक्षी के योनि में जन्म लेना, मनुष्य योनि का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करना। परंतु अगर हमें कोई पशु पक्षी योनि प्राप्त हो तो कैसे भगवान की भक्ति कर पाएंगे हम? तो ये सबसे बड़ा भय है व्यक्ति के लिए, कि कहीं ऐसा न हो कि हमें आने वाले जन्म में किसी पक्षी योनि, कीड़क का योनि प्राप्त हो। लेकिन थोड़ी सी भक्ति भी अगर हम करेंगे तो ये एक गारंटी है हमारे लिए। आजकल जीवन बीमा बहुत प्रचलित है, सब लोग जीवन बीमा करने के इच्छुक हैं। लेकिन जीवन बीमा हमारे लिए नहीं है, हमारे पीछे जो है उनके लिए है। लेकिन हमारे लिए क्या हम इंश्योरेंस पॉलिसी निकालेंगे, जीवन बीमा निकालेंगे? यह है कृष्ण भक्ति, तो ये हमारे लिए है। तो मृत्यु के बाद भी हमारा साथ देगा, अगले जन्म में भी हम वहीं से शुरू करेंगे जहां की पिछले जन्म में हमने समाप्त किया था। तो ये है भक्ति रस। जितने भी भौतिक रस हैं जो कि संसार से उत्पन्न होते हैं, वो हमें ये गारंटी नहीं दिला सकते कि आने वाले जन्म में हमें मनुष्य जन्म मिलेगा। हमारे कर्मों के अनुसार हमें अगला जन्म मिलेगा। इसको हमारा भाग्य कहते हैं, किस्मत, प्रारब्ध, जो भी कहिए, लेकिन संस्कृत में इसको दैव कहते हैं, दैव। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कर्मणा दैव नेत्रेण। तो दैव, दैव मतलब कि भगवान के अध्यक्षता में, भगवान के निर्देशन निर्देश के अनुसार एक जीव को अपने पूर्व किए हुए कर्मों के फल स्वरूप एक अन्य शरीर मिलता है, नया शरीर मिलता है। तो ये है दैव नेत्रेण, और ये हमारे हाथ में नहीं है। एक बार हमने कर्म कर लिए और मृत्यु हो गई तो फिर हम चयन नहीं कर सकते कि अगला शरीर हमको कौन सा मिलना है। टाटा बिरला वाला व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अगले जन्म मुझे होना ही है बिरला, बिरला परिवार में ही जन्म लेना, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कर्मणा दैव नेत्रेण, जो प्रकृति के नियम है वो तय करेंगे कि उस जीव का जन्म कहां होगा और किस अवस्था में होगा। और प्रभुपाद जी और हमें सांत्वना देते हैं आगे चल के, अगर किसी के मन में संशय हो कि अरे लेकिन हम अगर भक्ति में परिपूर्णता को प्राप्त नहीं करेंगे, हम बहुत ही शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे जीवन में, तो फिर क्या होगा? तो आगे यहां प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर इस जन्म में भी कोई व्यक्ति अपने भक्ति में परिपूर्णता प्राप्त नहीं करता है, फिर भी अगले जीवन में उसे ऐसा अवसर प्राप्त होगा, वो ऊंचे योनि में जन्म लेगा जिससे कि वो अपने भक्ति को आगे बढ़ाते जा सके और अपने जीवन को सफल कर सके। इसलिए भक्ति के, कृष्ण भावना के कार्य जो है वो अमृत है। तो अमृत ये तीसरा शब्द है, अमृत। मृत मतलब मरा हुआ, अमृत मतलब जो मरता नहीं है, जो अमर है, शाश्वत है। तो ये भक्ति का रस शाश्वत है या अमृत है। अमृत का अर्थ और एक भी होता है। अमृत का स्वाद कैसे होता है? बहुत मीठा होता है ना। जो देवता और असुरगण समुद्र मंथन किए थे किस लिए? अमृत पाने के लिए। लेकिन वो अमृत कैसा अमृत है? वो तो भौतिक अमृत है, हालांकि बहुत मीठा है और व्यक्ति को बहुत लंबी आयु प्रदान करता है इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर, फिर भी मृत्यु तो आनी ही आनी है। और इस अमृत का स्वाद बहुत ही मीठा, बहुत ही मधुर रहता है। लेकिन ये जो भक्ति का रस है, ये एक ऐसा अमृत है जिसका स्वाद अतुलनीय है। इसकी तुलना किसी भी भौतिक अमृत से, चाहे देव लोक का अमृत भी क्यों ना हो, उससे नहीं किया जा सकता। ये इतना श्रेष्ठ है। तो न केवल ये शाश्वत है लेकिन इसका स्वाद बहुत ही मधुर मीठा भी है, और ये स्थिर रहता है। जब व्यक्ति अपने भक्ति में परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता है तब वो भक्ति को कभी छोड़ता नहीं है। कच्चे अवस्था में, नौसुखिया अवस्था में हो सकता है कि वो भक्ति पथ को छोड़कर माया के चंगुल में पुनः फंस जाए, परंतु जब व्यक्ति परिपक्व हो जाता है अपने भक्ति में तो कभी भी भक्ति को त्यागता नहीं है। ये भक्ति की विशेषता है, इसलिए वो स्थिर रहता है। परंतु जो व्यक्ति इंद्र तृप्ति करता है, भले वो करोड़ों जन्मों तक करता क्यों न हो, ऐसा नहीं है कि वो स्थिरता प्राप्त करेगा, नहीं, उसका भोग त्याग का चक्कर चलता रहेगा। परंतु जो भक्त है, जो कई जन्मों से भक्ति करते आया है, और धीरे 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 से कई जन्मों से प्रगति करते आया है, एक न एक दिन वो ऐसे अवस्था को प्राप्त करेगा जब उसकी भक्ति बहुत ही सुदृढ़ हो जाएगी, बहुत ही स्थिर रहेगी, फिर वो डावाडोल नहीं होगा कभी भी, और फिर उस जीवन के बाद भगवत धाम चले जाएगा। तो ये है अमृत, भक्ति रस अमृत। तो ये भक्ति के रस का अमृत कैसा है, एक बूंद जितना है, कैसा है? चपल सुख जो है ना, ये एक बूंद के समान है। एक जगह प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक व्यक्ति था जिसने सुना था कि गन्ना जो होता है उसका रस बहुत मीठा होता है। गन्ना जानते हैं ना, शुगर केन। तो उसने पूछा गन्ना दिखने में कैसा है, तो किसी ने उसको बताया कि गन्ना ऐसे छड़ी जैसे लंबा होता है, गोल होता है और ये वन में होता है। अच्छा, तो उसने कभी देखा नहीं था, तो जंगल में गया, देखा कि ऐसे कहाँ है। कभी बांबू के पेड़ मिले तो बांबू को काट के खाने लगा, सोचने लगा कि इससे मुझे कुछ स्वाद मिलेगा, ये होगा गन्ना। लेकिन क्या उससे स्वाद मिला? तो उसी प्रकार से सभी लोग यहां पर जो अमृत है वो इस दुनिया में प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। उनको पता नहीं है कि सच्चा अमृत कहां प्राप्त होता है, और जो भी थोड़ा कुछ यहां मिलता है एक बूंद के बराबर है। जब आप गन्ने का रस पीने जाते हैं तो गन्ने का रस वो बेचने वाला क्या करता है, गन्ने के रस को मशीन में डालता है और गन्ने को फिर से निकालता है, फिर क्या करता है, फेंक देता है, फिर से डालता है, फिर क्या करता है, फिर से डालता है, और बाद में एक दो बूंद कुछ निकलता होगा। तो प्रहलाद महाराज इसको कहते हैं पुनः पुनः चर्वित चरवणाना, बार 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 वो एक बूंद दो बूंद। अब जब आपने रस निकाल लिया इन इंद्रियों से, और क्या पीते जाना इस रस को, बचा ही नहीं कुछ, एक ही बूंद रह गया। तो जन्म जन्मांतर से हम इसी के पीछे पड़े हुए हैं, उस एक बूंद के लिए। लेकिन ये भक्ति रस कैसा है? भक्ति रस सिंधु है। सिंधु मतलब समुद्र, सागर, विशाल है, असीमित है। तो ये है भक्ति रसामृत सिंधु। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो इस इंद्र तृप्ति के बूंद रूपी सुख के पीछे नहीं जाएगा, बल्कि भक्ति के सिंधु रूपी दिव्य आनंद के पीछे जाएगा जो बुद्धिमान है। सही है? तो ये अंतर है भौतिक रस और भक्ति रस में। इसलिए कितना अच्छा है ये शीर्षक सर किताब का, भक्ति रसामृत सिंधु। रूप गोस्वामी पाद ने हरेक शब्द को बहुत चुन चुन कर इस्तेमाल किया है, और आगे जब हम इनकी परिभाषा वगैरह पढ़ेंगे तब और हमें ज्ञात होगा कि रूप गोस्वामी कितने बुद्धिमान है। हर एक शब्द ऐसा मानो कि ये शब्द अगर थोड़ा भी ऐसा वैसा होता तो इसका मतलब बिल्कुल बदल जाता है। इन्होंने बिल्कुल सही के सही शब्द इस्तेमाल किए हैं। तो यहां पे भी किताब का नाम भी कितना सुंदर है, भक्ति रसामृत सिंधु। और आगे फिर तीसरी बात यह है, कैसे भक्ति रसामृत सिंधु विश्व की सहायता कर सकता है। और प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि हरेक प्राणी की एक प्रवृत्ति है। क्या प्रवृत्ति है? प्रेम करना। और उदाहरण क्या देते हैं प्रभुपाद जी? कौन सा पशु भी प्रेम करने की प्रवृत्ति रखता है? सिंह या शेर भी, वो भी प्रेम करने की प्रवृत्ति अपने हृदय में रखता है, भले वो थोड़ा ढका हुआ हो। परंतु इस सिंहनी जो है वो भी अपने बच्चे के प्रति बहुत प्रेम रखती है ना? हालांकि वो बहुत भयानक है दूसरों के लिए, लेकिन अपने बच्चे के लिए भयानक नहीं है। तो प्रेम करने की प्रवृत्ति जो है ये हर एक प्राणी में है, परंतु आगे क्या कहते हैं प्रभुपाद जी,
जानते नहीं कि प्रेम
हाँ ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और यही सबसे बड़ा दुख है, ट्रेजेडी है ये दुनिया में। प्रेम करने की प्रवृत्ति तो सब में है, लेकिन प्रेम को कहां केंद्रित करना चाहिए ये नहीं मालूम। इसलिए लोग संसार के लोगों में, संसार के वस्तुओं में अपना प्रेम लगाते हैं। और इसलिए कोई भी सुखी नहीं होता है, क्योंकि इस संसार के व्यक्तियों में, संसार के वस्तुओं में हमें सच्चा प्रेम देने का सामर्थ्य या क्षमता है ही नहीं। केवल कृष्ण है जो वास्तव में हमारे प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं और सच्चा प्रेम हमें दिला सकते हैं। जो इस दुनिया का तथा कथित प्रेम है वो प्रेम नहीं है। आजकल बड़ा दुर्भाग्य का समय है कि ये सिनेमा टीवी के माध्यम से ऐसी गलत धारणाएं प्रेम के बारे में प्रचार किए जा रहे हैं। तो लोग सोचते हैं जो सिनेमा में दिखाए जाते हैं प्रेम वही प्रेम है, लेकिन ये प्रेम नहीं है। इसको क्या कहते हैं, काम। तो काम और प्रेम के बीच में क्या अंतर है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की क्या परिभाषा है कोई बता सकते हैं? लोहा और सोना। बहुत अच्छा, लोहा क्या है, काम, और सोना प्रेम। और क्या बताते हैं, कौन सा श्लोक? हाँ बोलिए बोलिए। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम। आत्म इंद्रिय मतलब हमारे इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास, उसको क्या कहते हैं, तारे बोली काम, उसको काम कहते हैं। कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धौरे प्रेम नाम। लेकिन भगवान कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट करने का जब हम प्रयास करते हैं तो उसको प्रेम कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपने लिए, अपने इंद्रियों के सुख के लिए कुछ करना चाहता है तो उसे प्रेम नहीं कहते हैं। तो प्राय इस संसार का जो प्रेम है, जितने भी संबंध हैं ये संसार में, और ये संबंध में जितना भी तथाकथित प्रेम प्राप्त होता है वो प्रेम नहीं, वो केवल काम है। थोड़े जगह में ये काम थोड़ा सूक्ष्म रूप धारण करता है और थोड़े जगह स्थूल रूप धारण करता है, लेकिन है वही काम। जो संबंध है, पांच संबंध, पांच रस, पांच रस जानते हैं आप कौन से हैं बताइए, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य, माधुर्य। ये जीव का संबंध भगवान के साथ इन पांच रसों में हो सकता है, सही है ना? लेकिन ये पांच रस दुनिया में भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विकृत रूप में पाए जाते हैं। इनका विकृत प्रतिबिंब, परवर्टेड रिफ्लेक्शन, यहां पे पाया जाता है। पांचों के पांच आपको मिलेंगे, माधुर्य रस भी मिलेगा, वात्सल्य रस मिलेगा, सख्य रस मिलेगा, दास्य रस मिलेगा, शांत रस भी मिलेगा। परंतु ये संसार में जो ये पांच रस जो विकृत रूप है इनका, ये सब काम है, सारे के सारे काम कहलाते हैं। प्रभुपाद जी ने एक बार कहा था कि एक प्रकार का प्रेम है इस संसार में जो हालांकि काम है, परंतु जितना इस संसार में संभव है कि वो आध्यात्मिक रस के करीब आए, वो है एक मां का प्रेम अपने बच्चे के लिए। प्रभुपाद जी ने एक बार ऐसे कहा। ये भी भौतिक ही है, परंतु अगर करीब आना है किसी भी आध्यात्मिक विषय के बारे में तो वो ये है, अन्य जितना भी है वो सब स्थूल है, सबको काम कहते हैं। जब तक कि कोई संबंध कृष्ण पे केंद्रित नहीं किया जाए, कृष्ण के संबंध में नहीं देखा जाए, वो काम कहलाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये संबंध रखने नहीं चाहिए, ये गलत धारणा है। इन संबंधों को कृष्णमय बनाना चाहिए। जैसे पति पत्नी हैं, तो उनका संबंध जो है कृष्ण को केंद्र बनाए हुए बना के करना चाहिए। दोनों मित्र हैं, दोनों मित्रों को भी ऐसे ही करना चाहिए। माता पिता और बच्चों का संबंध है, ये संबंध भी भगवान कृष्ण के ऊपर आधारित होना चाहिए। तो कृष्ण को अगर हम केंद्र बिंदु बनाएंगे तो ये सारे संबंध जो हैं वो ठीक हो सकते हैं, फिर कृष्णमय हो सकते हैं। तो प्रभुपाद जी यहां कहते हैं कि एक बच्चा जो जन्म लेता है तो केवल अपने मां को जानता है, फिर अपने पिताजी को जानना शुरू करता है, फिर उसके आसपास में जो लोग हैं परिवार में उनको जानता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी पहचान और बढ़ने लगती है, फिर पड़ोस के लोगों को जान लेता है, फिर आगे और अपने मित्रों को जानता है, फिर और आगे चल के फिर समाज को जानता है, फिर देश को, विश्व को। तो ऐसे उसकी पहचान और उसके प्रेम करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ऐसा करने पर भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग जानते नहीं हैं कि इसकी समाप्ति कहां है, और यही मिसिंग पॉइंट है, यही अज्ञात वस्तु है इस दुनिया में, और वो अज्ञात वस्तु है कृष्ण। तो सारा प्रेम अगर श्री कृष्ण में केंद्रित किया जाए, प्रभुपाद जी कहते हैं, तो सारे समाज में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ आ जाएगा। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि अगर ये दुनिया में कोई कमी है तो केवल एक है, क्या है? पैसा, अनाज, क्या, किसकी कमी है? कृष्ण भावना, कृष्ण भावना मृत की कमी है, और किसी भी चीज की कमी नहीं है। प्रकृति ने पर्याप्त रूप से व्यवस्था की है सारे पशुओं के, मनुष्यों के, कीड़ों के, पक्षियों के भरण पोषण के लिए। प्रकृति में, निसर्ग में कोई कमी नहीं है। कमी तो केवल यह है कृष्ण भावना मृत की, इसलिए सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। और फिर यहां प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत का उदाहरण देते हैं। कौन सा उदाहरण है बताइए, पढ़िए जरा। कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने से सभी प्रसन्न होंगे, कौन सा उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने? हाँ, वृक्ष के मूल में पानी डालने से क्या होगा? सारा वृक्ष, सारे वृक्ष भर में पानी पहुंच जाता है, फल फूल उपशाखाएं सब जगह पानी फैल जाता है। उसी प्रकार से क्या
उदर में भोजन
करने से क्या होता है? शरीर को ऊर्जा मिलती है, शरीर को शक्ति मिलती है, इंद्रियां मजबूत हो जाती हैं, बलवान हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या, अगर हम कृष्ण को संतुष्ट करते हैं तो सब संतुष्ट हो जाते हैं। कोई श्लोक को जानते हैं, भागवत के श्लोक को? ना
नहीं।
हाँ बोलो, आप जानते हो श्लोक, पूरा बोलो। सर्वारणम अच्युतेज्या यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखाः प्राणोपहारा च सर्वेन्द्रियाणां सर्वार्हणम् अच्युते च। बहुत सुंदर है। यथा तरोर, तरु मतलब वृक्ष, मूल निषेचनेन मतलब पानी, सिंचाई करना। जैसे वृक्ष के मूल की सिंचाई जब होती है, तत्स्कंध भुज उपशाखा, जो वृक्ष के जितने भी अंश हैं, स्कंध है, भुज है, उपशाखाएं हैं, सबको पानी पहुंच जाता है। दूसरा उदाहरण, प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणाम, यथा, यथा मतलब जैसे। तो जैसे वृक्ष के मूल में पानी डालने से पानी सब जगह पहुंच जाता है, जैसे प्राणोपहारा, प्राण मतलब यहां प्राण का अर्थ है पेट, उपहारात मतलब भोजन देने से, यथा इंद्रियाणाम, जैसे पेट में भोजन डालने से सारी इंद्रियां बलवान हो जाती हैं, तथा उसी तरह सर्व अर्हणम, सर्व मतलब सारे देवता, अर्हणम मतलब पूजा करना, अच्युत इज्या, अच्युत कृष्ण का नाम है, इज्या मतलब उपासना करना। तो कृष्ण की उपासना करने से, कृष्ण की भक्ति करने से सारे देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। कई बार जब लोग नए भक्ति में आते हैं तो डरते हैं। एक बार एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे, अरे हमने तो 35 साल दुर्गा की पूजा की, अब हम कैसे छोड़ सकते हैं? आप कह रहे हैं कृष्ण की भक्ति कीजिए और अन्य देवी देवताओं की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है, तो दुर्गा की उपासना को हम कैसे छोड़ सकते हैं, वो तो क्रोधित हो जाएंगी हमारे ऊपर। वो डर रहे थे। तो आपको क्या कहना चाहिए अगर कोई व्यक्ति आपसे ऐसे कहेगा, तो क्या उत्तर देंगे आप?
यही श्लोक
सुनाइए और यही उदाहरण दीजिए, सर्वार्हणम सर्वार्हणम अच्युतेज्या, कि भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से सारी देवी देवता सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो दुर्गा देवी नाराज नहीं होंगी बल्कि प्रसन्न हो जाएंगी कि मेरा भक्त जो है बड़ा बुद्धिमान है, अब मेरा उपासक अब कृष्ण के भक्ति में लगा हुआ है, जो मेरे भी आराध्य देव हैं श्री कृष्ण, उनकी सेवा में अब मेरा उपासक लग गया है। दुर्गा देवी भी तो भगवान की भक्त है ना। जितने भी देवी देवता हैं वो भी तो सुर हैं, सुरगण, जो भगवान के भक्त हैं, इसलिए इसमें कोई नुकसान नहीं है। और फिर यहां पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बताते हैं इस ग्रंथ के बारे में, कि ये भक्ति रसामृत सिंधु हमें यह सिखलाएगा कि एक स्विच चालू करने से सब जगह उजाला कैसे फैलाना। पढ़िए, हम पढ़िए माता जी। तो अभी सोच लीजिए कि आने वाले 5 हफ्तों में आप स्विच दबाने के लिए सीख रहे हैं, वो एक स्विच दबाने से क्या होगा, सब सर्वत्र रोशनी फैल जाएगी, ज्ञान की रोशनी, भक्ति की रोशनी, प्रेम की रोशनी। जब अंधकार होता है तो व्यक्ति अज्ञान में होता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि आगे क्या है, कहीं खड्डा है, कभी क्या है, खतरा होता है अंधकार में। अंधकार में अज्ञान है, दुख है, चिंता है, लेकिन जब रोशनी आ जाती है तो ज्ञान आ जाता है, साहस आ जाता है, निर्भयता आ जाती है। उसी प्रकार से भक्ति रसामृत सिंधु रूपी स्विच को चालू करने से हमारा जीवन दिव्य प्रकाश से खिल उठेगा। तो करना है ना आप सब स्विच दबाना है। तो ये स्विच दबाने के लिए प्रभुपाद जी ने ये सुंदर ग्रंथ की रचना की है, लेकिन दुर्भाग्य से प्रभुपाद जी कहते हैं आधुनिक सभ्यता तरह तरह के भौतिक सुविधाओं को का आविष्कार करने में बहुत लगी हुई है, भौतिक सुख को बढ़ाने बढ़ाने में लगी हुई है, लेकिन वो जानते नहीं है कि ऐसे भौतिक सुविधाएं हमको सुखी नहीं कर सकते। केवल ये भक्ति रसामृत सिंधु ही हमें वो मार्ग बतलाएगा जिससे कि हम सच्चे आनंद की प्राप्ति कर सकें। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि जो दावानल हरेक व्यक्ति के हृदय में जल रहा है वो बुझ जाएगा इस भक्ति रसामृत सिंधु से। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि दुनिया में सभी लोग भ्रमित हैं, कंफ्यूज्ड, और ऐसे भ्रमित लोगों के लिए यह ग्रंथ लिखा गया है। सुनिए, दुनिया में सभी लोग भ्रमित हैं, सभी कंफ्यूज्ड हैं। अर्जुन जैसे व्यक्ति जो इतने सभ्य परिवार में जन्म लिए थे, सुसंस्कृत घर में, बड़े विद्वान थे अर्जुन, श्रेष्ठ कुल में अर्जुन ने जन्म लिया था, फिर भी अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने क्या याचना की कि मैं कुछ नहीं जानता? कौन सा श्लोक? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि द्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच श्रेयं स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम्। कि मैं पूरी तरह से भ्रमित हो चुका हूं हे कृष्ण, मुझे कुछ नहीं मालूम कि धर्म क्या है क्या नहीं है, मैं इसका विश्लेषण करने के लिए योग्य इस समय नहीं हूं। मैं चयन नहीं कर पा रहा हूं कि मेरे लिए उचित क्या है और अनुचित क्या है, ये विवेक बुद्धि मुझ में नहीं रही है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, यह श्रेय तन निश्चितम ब्रूहितन में, निश्चित रूप से मुझे बताइए कि मेरा श्रेय, मेरा परम उपकार किसमें है। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, अभी मैं आपके शरण में आ गया हूं, आपका शिष्य बन गया हूं, इसलिए मेरा गुरु बन के आप मुझे स्पष्ट इस ज्ञान को समझाइए। तो अर्जुन जैसे व्यक्ति भी ऐसे भ्रमित हो जाते हैं तो साधारण कलयुग के व्यक्तियों की बात तो दूर है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोग तरह तरह के चीजों को बना रहे हैं हमारे प्रेम करने की प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। केवल कृष्ण को हमारे जीवन के केंद्र में लाने से सारी हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगे। अंत में प्रभुपाद जी आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार का संबंध बताते हैं। सेकंड लास्ट पैराग्राफ, लास्ट टू थ्री लाइन्स, दो तीन लाइन, क्या संबंध बताते हैं आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार में?
साक्षात्कार होने से ही असली आत्म साक्षात्कार
होगा। बहुत अच्छा, करेक्ट। भगवत साक्षात्कार होने से ही आत्म साक्षात्कार संभव है। इसके लिए उदाहरण क्या दिए हैं प्रभुपाद जी? सूर्य। क्या है ये उदाहरण, जरा समझाइए।
सूर्य प्रकाश
क्या देख नहीं सकते? अपने आप को देख नहीं सकते। अगर हम अपने आप को हम दर्पण में देखना चाहें तो अगर रोशनी नहीं होगी तो हम देख पाएंगे? नहीं। अगर समझ लीजिए कि दिन है और सूरज की रोशनी है, तो जब आप दर्पण के आईने के सामने जाएंगे अपने आप को स्पष्ट आप देख पाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप क्या देखते हैं? आप सूरज की किरणों को देखते हैं, फिर अपने आप को आप देख पाते हैं। सूरज की किरणें नहीं होती तो अपने आप को भी आप देख नहीं पाते। तो सूरज जो है वो कृष्ण के समान है। इसलिए प्रभुपाद जी यह कह रहे हैं कि जो कृष्ण को जानता है वो भी अपने आप को जान पाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शिक्षा में बताया है कि सारे वेदों को जानने के लिए तीन कदम हैं। कौन से हैं ये तीन कदम, बताइए? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध क्या है? क्या है संबंध? संबंध मतलब क्या? इसमें कौन से टॉपिक आते हैं, कौन से विषय आते हैं इसमें? मैं कौन हूं, भगवान कौन है, और मेरा और भगवान का संबंध क्या है? ये भौतिक जगत क्या है और इस भौतिक जगत का संबंध मेरे साथ कैसा है, भौतिक जगत का संबंध भगवान के साथ कैसा है, तो इन तीनों का परस्पर जो संबंध है इसका ज्ञान संबंध है। तो संबंध सबसे प्राथमिक कदम है। तो अगर हम ये नहीं जानेंगे कि भगवान क्या है तो हम अपने आप को भी अच्छी तरह से नहीं जान पाएंगे, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मम प्रकृति स्थानिक कर्षति। उन्होंने कहा है कि जीव जो है वो मेरा सनातन अंश है। मनः षष्ठान इंद्रियाणि, अपने मन और इंद्रियों के छह इंद्रियों के साथ प्रकृति के कड़क नियमों से संघर्ष करता है। तो हम कौन हैं? हम श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं। तो ये हमारी खुद की पहचान भगवान श्री कृष्ण को जानने से ही होगा। भगवान से स्वतंत्र होकर हम अपने आप को पहचानने का प्रयास करेंगे तो हम गलत निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी यहां इस महत्वपूर्ण बात को बता रहे हैं। और आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं, विशेष करके ये भक्ति रसामृत सिंधु मैं उन लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं जो कि इस हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्य हैं, अर्थात हम सब के लिए। हम लोग पुस्तक वितरण पे बहुत जोर देते हैं, लेकिन पुस्तक वितरण करते समय कोई व्यक्ति हमें पूछेगा कि इसमें क्या लिखा है और हम कहेंगे मुझे पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है, तो वो व्यक्ति थोड़ी लेगा किताब। तो ये किताबें सबसे पहले सर्वप्रथम तो हमारे लिए हैं। हम सबको इन ग्रंथों को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, समझ लेना चाहिए। हमारी आपस में चर्चा जो होती है ऐसे ग्रंथों के ऊपर होना चाहिए, न कि हम इधर उधर की बातें करें। ये प्रजल्प कहलाता है। प्रजल्प करने के विषय तो बहुत है संसार में, और भौतिक जगत या माया का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि भक्तों के समाज में भी ऐसे घुस गया है और घुस जाता है कि भक्त लोग भी बहुत प्रजल्प करते हैं। कभी कभी करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, क्योंकि पुरानी आदतें हैं। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, हमें ऐसे प्रजल्प से बचना चाहिए। हमें इन किताबों के ऊपर अपना ध्यान मग्न करना चाहिए ताकि जो हम चर्चा करेंगे अन्यों के साथ वो इन ग्रंथों के ऊपर आधारित हो। जो हमारा श्रवण होगा, जो हमारा स्मरण होगा, उसी चीज का हम कीर्तन भी करेंगे। जैसा श्रवण जैसा स्मरण वैसा कीर्तन। इसलिए हमारा श्रवण और हमारा अध्ययन और स्मरण इन ग्रंथों के ऊपर हुआ, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु, तो हमारी वाणी भी हमारे शब्द भी ऐसे ही होंगे। और ऐसा श्रवण कीर्तन स्मरण करके अपने मनुष्य जीवन को हम सफल बना पाएंगे और इस जीवन के अंत में हम भगवान के धाम में जा पाएंगे। तो वैसे ये केवल आमुख है, अभी कल हम भूमिका से शुरू करेंगे। जो वास्तव में भक्ति रसामृत सिंधु श्लोक है एक के बाद एक। आज तो केवल पहला क्लास था ना, थोड़ा हल्का था आज, कल से ज्यादा गहराई में जाएंगे। ज्यादा भारी लगा क्या आपको? ये भारी था तो हमने ये तीन पॉइंट आज समाप्त किए हैं। और यहां बीच में जो भक्ति रसामृत सिंधु शब्द का अर्थ वगैरह है वो भी हमने इसके बारे में भी चर्चा कर ली है। तो अभी आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं, कोई टीका टिप्पणी, कोई प्रश्न इत्यादि, थोड़ा समय है हमारे पास। हाँ, सेवा और कर्तव्य में अंतर क्या होता है, आप में से कोई बताना चाहेंगे? सेवा और कर्तव्य में क्या अंतर होता है?
सेवा भक्ति कर...
अंतर क्या है दोनों में?
सेवा निस्वार्थ है, उसमें कोई अपनी इच्छा की तृप्ति की भावना बहुत कम होती है, जबकि कर्तव्य होता है वो किसी के प्रति कुछ करना, जो कि एक स्वाभाविक प्रकृति होती है, उस कार्य को करने को कर्तव्य है।
सेवा में प्रेम होता है, कर्तव्य।
हाँ, यही मैं एक शब्द जानना चाहता था। एक शब्द में उत्तर दिया जा सकता है, सेवा और कर्तव्य में अंतर क्या है?
प्रेम।
सेवा वो चीज है जो प्रेम से किया जाता है, कर्तव्य वो है जिसमें प्रेम नहीं, घृणा भी नहीं है, जिसमें व्यक्ति बड़ा अपना हृदय लगा के काम करता है, परंतु प्रेम नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हर एक व्यक्ति इस जगत में कार्य करने के लिए चार तरह के चीजों से प्रेरित होता है। सबसे निम्न श्रेणी का व्यक्ति भय से प्रेरित होता है। दफ्तर में कोई व्यक्ति है, मालिक कहता है अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, तो बड़े अच्छे ढंग से काम करता है। कोई व्यक्ति सुनता है कि हम पाप करेंगे तो हमें बहुत दंड मिलेगा, कम से कम वो शास्त्रों में तो विश्वास करता है, लेकिन फिर भी भय से उसके कार्य प्रेरित होते, सोचते मैं पाप नहीं करूंगा, गलत काम करूंगा तो बहुत दंड मिलेगा, बहुत दुख मिलेगा मुझे। कोई चोर है, वो सोचता है अगर मैं चोरी करूंगा, पकड़ा जाऊंगा तो बहुत पिटाई होगी, जेल में जाऊंगा, तो चोरी नहीं करता है। तो यह है निम्न श्रेणी का, निम्न श्रेणी की प्रेरणा, भय। भय भी आवश्यक है इस दुनिया में। अन्य जगह भी कहा गया है कि भय ही प्रेम का उद्गम है, भय नहीं होगा तो सीधे प्रेम के कैसे जाएंगे। अगर हमें पाप से कोई डर नहीं है, भक्ति शुरू करने के पहले, तो हम प्रेम तक पहुंचेंगे नहीं। लेकिन भय के स्तर पर रहना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो भय के ऊपर है पुरस्कार। मालिक कर्मचारी से कहता है तुम इतने ज्यादा हमारा माल बेचोगे तो तुमको हम 10% ज्यादा देंगे, तो और भी परिश्रम करता है, दिन रात और 2 घंटे लगाता है, सेल्समैन जाता है इधर उधर बेचने के लिए। लोभ, सोचता है कि मैं कुछ पाऊंगा, कोई भौतिक चीज पाऊंगा। या कोई लोग भगवान के पास भी आते हैं या देवी देवताओं के पास जाते हैं कोई भौतिक चीज मांगने के लिए, हम आपकी उपासना करेंगे लेकिन हमें ये दिला दीजिए, धनम देही रूपम देही, तरह तरह की चीजें दीजिए। तो ये दूसरा है, लोभ या पुरस्कार। इसके ऊपर और एक स्तर है, कर्तव्य। व्यक्ति सोचता है न मुझे इससे कोई ज्यादा लाभ चाहिए, न मैं भय की वजह से कर रहा हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि मैं एक नीति का पालन करने वाला व्यक्ति हूं, और मैं समझता हूं कि मैं कर्मचारी होने के नाते या जो भी कुछ एक मनुष्य होने के नाते मुझे ऐसे काम करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है। तो वो कर्तव्य के अनुसार काम करता है। और सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? प्रेम। जो व्यक्ति प्रेम से प्रेरित होकर कार्य करता है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो प्रेम से जो कार्य किया जाता है उसको सेवा कहते हैं, ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। तो आपका जो प्रश्न है कि कर्तव्य और सेवा में अंतर क्या है, तो आपने नंबर 1 और नंबर 2 के श्रेणी के बीच में अंतर पूछा है। अंतर है प्रेम का। भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा कि ये तो सिंधु है, इतना विशाल है, असीमित है, और मैं तो छोटा क्षुद्र जीव हूं, मैं क्या इस सारे सिंधु को जानूंगा या दूसरों को इसका ज्ञान दिलाऊंगा, मैं तो एक बूंद मात्र जान सकता हूं, जानने का प्रयास कर सकता हूं, अपनी नम्रता से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे थे। तो मैं तो इस सिंधु का मुकाबला नहीं कर सकता, रूप गोस्वामी विरचिति भक्ति रसामृत सिंधु तो अतुलनीय है, ये अपनी जगह में है, इसलिए मैं तो सिंधु के जगह केवल बिंदु लिखूंगा। इसलिए उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु लिखा, ये इस सिंधु का एक बिंदु है। जैसे प्रभुपाद जी भी कहा करते थे, अगर आपको समुद्र के पानी के गुण का विश्लेषण करना है तो आपको क्या करना होगा? सारा समुद्र का पानी निकालेंगे, थोड़ा सा एक बूंद निकालिए, आपको पता चल जाएगा कि समुद्र का पानी कैसा होता है। आपने भी अनुभव किया होगा, कभी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और डॉक्टर कहते हैं कि पहले खून की परीक्षा करनी होगी, तो क्या सारे के सारे 5-10 लीटर शरीर से निकालते हैं खून? क्या करते हैं? थोड़ा सा, इतना 5 मिलीलीटर निकालते हैं खून, 5-10 मिलीलीटर निकालते हैं, पता चल जाता है कि सारा खून कैसा है। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी भी कहा करते थे कि अगर आप कृष्ण को जानना चाहते हैं तो आत्मा की परीक्षा कीजिए, क्योंकि आत्मा भी कृष्ण का अंश है, तो जो गुण आत्मा में है वो असीमित मात्रा में भगवान कृष्ण में है। तो उसी प्रकार से इस बिंदु को जानने से हम सिंधु के गुणों को भी जान जाएंगे। तो भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, ठीक है? और एक प्रश्न कोई हो तो? ये पहले के जो 4-5 अध्याय है ना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इनके ऊपर हम ज्यादा समय लेंगे, और बाद में जो आने वाले अध्याय हैं उनको कम समय में हम खत्म करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहां जो प्राथमिक ज्ञान है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कल भूमिका होगी और देखेंगे कैसा, हमें भी नहीं पता कि कितना समय लगेगा इसके लिए, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे देखेंगे, प्रयास करेंगे। भूमिका तो कम से कम कल अवश्य समाप्त करेंगे, और अगर समय हो तो प्रथम अध्याय भी शुरू करेंगे, ठीक है? तो आप कृपया इस भूमिका को कल पढ़ के आइएगा, पढ़ेंगे गृह पाठ होमवर्क।
चार चीजें
बस। तो अभी हर चीज में हमें अपनी स्वयं अपनी परीक्षा करनी चाहिए, मन ही मन में, कि हम कौन से स्तर में हैं, है ना? किसी को बताने की जरूरत नहीं, अब केवल अपने लिए, केवल हमारे लिए हम अपने मन ही मन में सोचें, हम जो भी कार्य करते हैं हम कौन से स्तर पर स्थित होकर कर रहे हैं, कौन से स्तर पर स्थित होकर करना चाहिए, सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? प्रेम। और सच्चा प्रेम क्या है? कृष्ण प्रेम, जो हम सीखेंगे यहां भक्ति रसामृत सिंधु से, ठीक है? तो कल हम 3:30 बजे मिलेंगे, 3:30 से 5:30 भी 6 बज गए, तो आज यह कथा विराम। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, गौ प्रेमानंदे। कहीं भी आपको ऐसा लगे कि थोड़ा भारी हो रहा है तो आप बताइए, थोड़ा हल्का करने का प्रयास करेंगे। अगर गति भी तेज हो रही है ज्यादा तो वो भी बताइए, लेकिन थोड़ा बहुत तेज जाना पड़ेगा, क्योंकि 19 अध्याय हमें करने हैं, साथ साथ भूमिका और अमुक, ठीक है? हरे कृष्णा।